नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। इसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला खंड भी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चंपावत जिले के स्थापना दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। वक्ताओं ने जिले के विकास पर अपने विचार साझा किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाया है। पीठ ने कहा है कि उसने कानून के प्रत्येक पहलू के लिए प्रथम दृष्टया पर विचार किया है। पीठ ने कहा है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह विधेयक सबसे लंबी चर्चा के बाद संसद में पारित हुआ।
का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे वो भी बंद हो जाएगा, और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट हवाई अड्डे से एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा देहरादून बेंगलुरु के लिए शुरू की जा रही नई हवाई सेवा का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के समग्र विकास और हवाई संपर्क विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में इस नई पहल के साथ ही देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने देहरादून हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए दैनिक सीधी उड़ानों की शुरुआत के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सीधी हवाई सेवा उत्तराखंड के युवाओं, उद्यमियों, आईटी प्रोफेशनल्स, छात्रों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु देश की तकनीकी राजधानी है और वहां उत्तराखंड के हजारों युवा शिक्षा, सेवा और स्टार्टअप क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब उन्हें राज्य आने जाने के लिए और अधिक सुविधाजनक, समयबद्ध और सुरक्षित विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को हवाई, रेल और सड़क मार्ग से तीव्र और सुलभ संपर्क व्यवस्था से जोड़ना है, जिससे न केवल पर्यटन को बल मिलेगा बल्कि राज्य में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरलाइंस कंपनियों को आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन दे रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय अखंड पाठ का आज विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अनेक लोगों ने अखंड पाठ में भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को उनके 4 वर्ष के सफल कार्यकाल पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मुख मत्था टेक कर देश और प्रदेशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए अरदास की।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने पुरानी फाइलों से पटे पड़े अनुभागों में 1 महीने के भीतर फाइलों की छटनी कराने को कहा। उन्होंने सचिवालय प्रशासन को शीघ्र ही रिकॉर्ड रूम के लिए स्थान चिन्हित कर एक रिकॉर्ड रूम तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें छटनी के बाद आवश्यक फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। मुख्य सचिव ने सचिवालय परिसर में 10 से 12 अनुभागों के लिए तात्कालिक रूप से पोर्टेबल कैबिन भवन की व्यवस्था सुनिश्चित कर अनुभागों को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही सचिवालय परिसर के अंतर्गत अनुभागों का निरीक्षण रोस्टर फिर से प्रसारित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अनुभागों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। इसके अलावा उन्होंने सचिवालय परिसर के अंतर्गत सभी भवनों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चंपावत जिला आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आदर्श चंपावत पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले से देशभर में प्रतिष्ठित पदों पर रहे व्यक्तियों व विशिष्ट जनों ने जिले के विकास पर चर्चा की और अपने विचार साझा किए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श चंपावत की जो परिकल्पना की गई है, उसके तहत जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है।
आज जनपद जो है विकास की राह पे अग्रसर है। आदर्श चंपावत की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस जनपद को लगातार प्रगति की समीक्षा की जा रही है और सभी विभागीय जो अधिकारी हैं उनसे भी इसी विषय पर आज के विषय पर मंथन किया गया कि किस प्रकार से हम जनपद चंपावत को आगे 2047 तक इसको एक प्रगति पैदान करें, एक विजन बनाए, उस पर भी चर्चा परिचर्चा की।
प्रदेश के व्यापारी, किसानों और आमजन ने जीएसटी की दरों में कटौती के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस कदम से न सिर्फ कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि आम आदमी की जेब पर भी बोझ कम होगा। बागेश्वर के स्थानीय व्यापारी अंकित गोयल का मानना है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी होगी और ग्राहकों को भी किफायती दामों पर सामान मिलेगा।
देखिए, माननीय मोदी जी ने जो ये राहत दी है ये स्पष्ट तौर पे सीधे व्यापारी को नहीं है, जबकि कस्टमर जो है उनको भी बड़ी राहत मिली है। जो 28% वाला स्लैब था वो आज 18% हो चुका है और 12% वाला स्लैब जो था वो 5% हो चुका है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी या जैसे गाड़ियां वगैरह हैं उसका मार्केट जो था उसमें 1 लाख से लेके और 10 लाख तक की राहत मिली है व्यापारियों को और वही राहत कस्टमर को भी मिलेगी। तो एक ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ऐतिहासिक फैसला है जिसके द्वारा व्यापारियों को और साथ ही उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत देने का प्रयास किया गया है।
वहीं स्थानीय निवासी दरबान सिंह ने जीएसटी दरों में कटौती और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम करने के फैसले को जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनता को राहत मिलेगी।
अभी जो 28% सरकार का चला था उसमें से कम करके 18.5 का जो हमने अभी सरकार ने ये कर दिया, इससे क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे खाद्यान्न क्षेत्र में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गए या खाद्यान्न जो भी सामान है उसमें काफी लाभ हमें मिलेगा। वही अगर हम देखें जैसे भवनों का हमारा ये बहुत अच्छा है, इसमें आने वाले समय पे लाभ ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। जैसे हम जैसे निम्न वर्ग के लोग हैं हम लोगों के लिए इसमें काफी राहत इसमें देखने को आ रहा है।
भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियंता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बागेश्वर जिले में विभिन्न विभागों और संस्थानों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर क्षेत्र में आयोजित मुख्य समारोह में वक्ताओं ने कहा कि अभियंता समाज और विकास की रीढ़ है। इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके जोशी ने कहा कि अभियंताओं की सोच और परिश्रम ने देश को आधुनिक दौर में खड़ा किया है। उन्होंने युवाओं से विज्ञान और तकनीक की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। इसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला खंड भी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की देहरादून से बेंगलुरु हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चंपावत जिले के स्थापना दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। वक्ताओं ने जिले के विकास पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।